तथा उनके वादन में अपेक्षित रहने वाली विस्तार क्रिया पर मैं विचार प्रकट करने जा रहा हूं। खास करके मैं तबला, पखावज और मृदंग, ये तीनों चीजों पे ही कहने जा रहा हूं। विस्तार यह भारतीय संगीत का निरंतर मूलभूत अधिष्ठान रहा है। भारतीय संगीत के चार स्तर माने जाते हैं, जो शास्त्र, तंत्र, विद्या और कला, ऐसे चार स्तर है। और ये चार स्तर
My function here is going to be to try to translate what Suresh ji is going to say for the benefit of those in the audience whose knowledge of Hindi perhaps is not adequate. So I'm just forced into the service, pressed into service, but with pleasure. So I'll just try to augment, and sometimes we will exchange comments or questions. So Suresh ji is going to talk about, first of all, there are three instruments which are principal: pakhawaj, mridang, and tabla. And one of the constant traditional fundamental principles of the way these instruments are played is always the notion of what is called vistar. And that can be translated loosely as either expansion or improvisation, depending on one's point of view and depending on the context. And there are four particular components of this, and he is going to illustrate those components. And those might be described as theory and technique, vidya is knowledge, and kala is art. So all these four need to be fused into a very nice whole in order to make the art complete. And so he's going to try to demonstrate and talk about how these different components can be fused into a very aesthetic whole.
मुझे लगता है कि राग और ताल संगीत की हमारी विशेष परंपरा ने हमें कला के साथ अनुशासन बताया, और राग ताल में अनुशासन ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक ही स्केल के जैसे दो दो तीन तीन राग होते हैं, वैसे एक ही मात्रा के अलग अलग ताल होते हैं। 14 मात्रे का झूमरा होता है, आड़ा चौताल होता है, धमार होता है, दीपचंदी होती है, लेकिन हर एक ताल का एक अपना कायदा होता है। पुरिया, मारवा, सोनी एक ही स्केल के राग है, मगर अलग अलग जैसे है, वही ताल की बात है। और ये ताल एक डिसिप्लिन बताता है। और जब राग ताल के कोई भी हम लोग विस्तार पे तक शुरुआत करते हैं, तो इसमें एक अनुशासन बहुत जरूरी होता है। और ये अनुशासन पहले तबले में क्या है?
सो one of the most important ideas is the idea of discipline, and this discipline underlies all the different manifestations of the way in which the concept of tala is expanded. Just as in music one may have different ragas based on the same scale, same way in the world of rhythm one can have different talas based on the same number of matras. For example, dhamar, deep chandi, ada chautal, and so on. All are talas of its 14 matras, similar to what we find in music, such as ragas puriya, sohni, marwa, etc.
Tabla ke liye apni bhasha hai, uske टेक्निक को हम लोग निकास पद्धति कहते हैं, और ये निकास बहुत अपना अहम रोल रखता है। और ये निकास जो पद्धति है, भाषा कैसे बनती है, पहले वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से रचना, रचना से फिर बंदिश, और इतनी तरह तरह की बंदिश होती है कि उसको अलग अलग फॉर्म में ढाला जाता है और ये फॉर्म्स क्या कितने तरह के फॉर्म्स हैं। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बंदिश ताल की कौन सी है, तो ठेका। ठेका ये ताल की पहली बंदिश है और उसके बाद पेशका, फिर कायदा, फिर रेला, फिर गर्द, टुकड़ा, परण, चक्रदार, तिहाई, कमाली चक्रदार, बहुत सारे फरद, आमद। लेकिन ये सारे फॉर्म्स दो मेन दो स्ट्रीम में उसका विभाजन होता है। एक तो होता है विस्तार क्षम क्रिया और दूसरी होती है अविस्तार क्षम रचना या पूर्ण संकल्पित रचना, ऐसे भी कह सकते हैं। माइंडकर जी के किताब में सत्यशील देशपांडे जी ने ये शब्द सुझाया है कि अविस्तार क्षम रचना को आप पूर्ण संकल्पित रचना ऐसा नाम बताइए। लेकिन बात एक ही है, टुकड़ा, गर्द, परण ये अविस्तार क्षम रचना है, एक बार बजाया जाती है तो पूरी हो जाती है। पेशकार, कायदा, रेला ये पूरी रचना नहीं है, ये कहते हैं इसका विस्तार आवश्यक बनता है। और वो इसीलिए ये जितने तबले में फॉर्म्स हैं तो पेशकार, कायदा, रेला ये विस्तार क्षम रचना है और अदर फॉर्म्स आर अविस्तार क्षम, विच कैनॉट बी विस्तार कर नहीं सकते।
Complicated thought. First of all, one starts with the basic components of the rhythmic repertoire. So just as in language one has the alphabet followed by syllables, followed by words, followed by sentences, and if one is composing poetry, followed by verses, stanzas, and finally the complete composed form. Similarly, in the art of playing the tabla and other instruments, one has similarly the syllables of the tabla, followed by the bowls, followed by the various different ways of combining them, using stresses and other important ingredients, followed by different types of compositions, such as peshkar, rela, etc. Now, when talking about these, it is important to distinguish two types of forms here, genres you might call them. One is those which are actually capable of being expanded and improvised and presented. All of this perhaps one can sum up by saying they can be expounded very effectively. And there are other forms where, by their very nature, they are only capable of being expanded or expounded in a limited way. And he's certainly going to demonstrate some of them later on.
हम लोग देखते हैं कि किसी गाने के साथ संगत करते हैं तबला वादक तो ठेका पकड़ते हैं, लेकिन ठेका इस तरह नहीं कभी होता है कि ठेका पहले आवर्तन में ठेका बजता है और दूसरे आवर्तन में ठेका बजता है, उसमें फर्क होता है, उसके स्ट्रेसेस बदलते हैं, वजन बदलते हैं। अगर वो ही ठेका रहे तो अपेक्षित क्रिया नहीं बनती है, इसलिए मशीन के ठेके से तसल्ली नहीं होती है। तो ये जो ठेका, इसको विस्तार ठेके में जो होता है उसको कहते हैं ठेका भरी। ये हमारी पुरानी परंपरा है कि ठेका भरी ये कहते हैं। तो ये गाने के साथ आप लोग सुनते ही है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये कहना है कि ठेका ताल से अपनी ताल की पहली बंदिश है ठेका, मगर ठेका ताल से आइडेंटिटी अपने अलग रखता है। वो कहता है कि मुझे मंजूर नहीं है तुम्हारी ताल की आकृति। ताल जैसे कि इसका बड़ा एग्जाम्पल तीन ताल है, तीन ताल के पहले मात्रे पे धा है, पांचवें मात्रे पे धा है, नब्बे पे धा क्यों, नब्बे मात्रे पे खाली पे धा क्यों, और तेरहवें पे धा होना चाहिए वहां ताल लगा है। इतना ही नहीं तो चौदहवें मात्रे के धीन का जो वजन है वो तो तालाकृति में कहीं भी नहीं है। धा तीन तीन ता ता धिन धिन दा, तो ये धिन धिन दा ये जो वजन है 14वें मंत्र का स्ट्रेस, ये ताल के आकृति से अलग क्यों हो गई है? क्योंकि ये कला है, ठेका, ये पहली कला है। और ये किस तरह ताल को प्रेजेंट किया ठेके ने, कि ताल से हटकर प्रेजेंट करते टाइम उसको लगा कि ये ताल का मुखड़ा है। धा तीन तीन ता त्रक धिन धिन दा ता धिन धिन दा, ऐसे कहने से लोग भी कहते हाँ सब। और सम इज द मोस्ट हाईएस्ट इमोशनल पॉइंट ऑफ इंडियन म्यूजिक।
नाउ कमिंग डाउन टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ताल, एज वन नोज देयर इज सर्टेन थियोरेटिकल एस्पेक्ट टू इट, एंड Pandit ji has given the example of the teen taal. The first composition in a particular taal, one might consider the theka as the first primitive composition in that taal. But the taal itself is abstract. For example, teen taal has 16 matras. One knows that the first two divisions are voiced and the third division is a kali and so on. But although this abstract form provides us with a basis, the actual theka itself begins to take some liberties with what is received knowledge. So, for example, there is a dha on the first matra, the sam. There is a dha on the fifth matra. But why should there be a dha on the ninth matra, which is really the khali, beginning of the khali division? And on the other hand, on the 13th matra, very often there is a na. And then the way in which the weight is rendered in the taal, especially on the 14th beat, a certain ornamentation is introduced. That particular way is in a way saying that one is taking an improvised liberty with what is received knowledge as the structure of the taal. So in this way, theka might be regarded as the first beginning primitive composition in a taal.
तो मुझे लगता है कि विस्तार क्षमा के क्या क्या प्रकार है। एक तो ठेका भरी, फिर कायदे के विभिन्न पलटे, विभिन्न बल, पेजदार बल, गणितीय बल, काव्य प्रधान बल, किसी विविक्षित अक्षर पर दी गई जरब की वजह से उसका अलग वेरिएशन या फॉर्म इम्प्रोवाइजेशन होना, या किसी अक्षर को नहीं बजाने से, याद से भी एक वेरिएशन इम्प्रोवाइजेशन बनना, इस तरह के बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन होते हैं। मूलभूत रचना का स्वरूप छंद के माध्यम से कायम रखते हुए उसमें अलग भाषा का प्रयोग करना, इन अलग अलग धाराओं का प्रयोग करते हुए कलाकार अपनी प्रतिभा को जगाकर विस्तार क्रिया साधने की कोशिश करता है। ये मुझे लगता है कि विस्तार क्षम क्रिया में दो प्रकार मुझे लगते हैं कि आम तौर पे है। एक तो पूर्व नियोजित विस्तार, प्री कंपोज विस्तार, और दूसरा है स्पॉन्टेनियस। ये दो अलग धारा है। तो इसमें प्री कंपोज भी हमारे तबले में होता है, जैसे कि मैं एक आम कायदा का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो धाति ते धाति ते धा धाति ते धा गति ना गि ना ताति ते ताति ते धा,
in a moment is making the point that there are two, even in the compositions, one can distinguish two types of compositions. One is those which allow for expansion or exposition, but which are previously already conceived and thought of. And those, on the other hand, where the actual expansion is done on the fly, as it were, extempore.
अंतिम चरण है धागा धीना गिन टीटी धागा धीना गिन। इसमें अगर मेरा मन कहा कि तकड़ देंगे धीना गिन बजाओ तो अलाउड नहीं है, ये डिसिप्लिन बताता है। हमारे संगीत में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मन मांगता है उसके पीछे शिस्त है, डिसिप्लिन है, और उस डिसिप्लिन में रहकर ही हमें विस्तार करना है। ये कायदे की खास डिसिप्लिन है और इसीलिए कायदा कहते हैं। लेकिन कायदा फिर काव्य प्रधान भी होता है, काव्य से दूसरा शब्द नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ प्रतिभाशाली लोग होते हैं उसको इस कायदे में से ही नए शब्द निकाल देते हैं। जैसे कि धाति ते दादा ती ते धागे धीना गिना, इसमें धागे न शब्द नहीं है। आप देखिए धागे ना शब्द नहीं है, लेकिन धागे ना को बुजुर्गों ने कैसे कहा इसका एक एग्जांपल देता हूं। धाते धागे धीना गिना में से गिना को पहले अलग कर दिया। नैन भाई देखिए बुजुर्गों ने हमारे कंसेप्ट में ही एक ऐसे रही है बात कि नियम बनाते हैं और नियम तोड़ने के भी नियम बना दिए।
वेरी ब्यूटिफुल, आई थिंक यू प्रॉब्ली गॉट द सेंस ऑफ इट, इवन दो because this language is universal. You see, what is he saying is doesn't require translation in a sense, but the underlying idea is very beautiful. First, Panditji began by stating that so far as the composed form of the kayada is concerned, this is a matter of discipline. Everybody needs to learn it. One can't allow one's fancy of the moment to take over and change the particular goals of that particular kayada. On the other hand, there is very similar to the old poetic tradition, something like poetic fancy. And therefore, the old composers of the kayadas make a transformation by stages from particular syllables which are not allowed in that particular kayada and transmute them to bring in other syllables which they would like to bring. And that is what the substance of his illustration was.
हम लोग कहते हैं कि पहली पंक्ति जो बजाते हैं और उसका विस्तार करते हैं तो वो मूल रचना हो गई, मतलब वो कायदा हो गया। लेकिन बुजुर्गों ने ये भी विचार किया कि पहले कलश मग पाया, आधी कलश आणि मग पाया, असा अजंता एलोरा कब हम एलोरा को देखते हैं तो ऊपर से मंदिर बनाना शुरू किया है, बाद में बेस बन गया। तो इस तरह एक कायदे की रचना देखिए, की विस्तार से शुरू हो गई और मैं उस रचना को आम रचना ही बताऊंगा, कुछ खास अनवट रचना नहीं बताने जा रहा हूं, जो आप सब लोग जानते हैं ऐसी रचना। देखिए, धा करधा ते धा गते टकरधा ते धा करधा ते धा गते ते धा गे द्रक दिन आगे न ते टकरधा ते धा गते टकरधा ते धा करधा ते धा गते ते धा गे द्रक तीन आगे न तीन तीन आगे न तागे तीन आगे तागे ते टकरधा ते तागे ते तागे द्रक तीन आगे न ते टकरधा ते धा गते ते टकरधा ते धा करधा ते धा गते ते धागे द्रक दिन आगे न धा करधा। ये उस्ताद अहमद जान तेरेखवा का साहब हमेशा बजाते थे। आप जिन जिन लोगों ने उनका तबला सुना है ये रचना जरूर सुना होगी। ये रचना के बगैर उनका तबला कभी बजा नहीं है, वो इस रचना के बगैर। और हमेशा कान खींचते थे नत्थू खां साहब की याद करके। लेकिन इसके बाद का बल बजाते थे वो कायदा है और ये विस्तार। लेकिन प्रतिभावंत कला का कोई विस्तार को ही ऐसा एक विस्तार बना देते हैं कि जो कायदे का स्वरूप लेकर ही प्रेजेंट करते थे। कितनी खूबसूरत बात है। धा करधा ते धा गति करधा ते धा करधा ते धा गति धा गति कर दिन आगे न ते करधा ते धा गति करधा ते धा करधा ते धा गति धा गति कर दिन आगे न ते गति न आगे न ता गति रख ता गति कर करधा ते धा गति धा गति कर दिन आगे न ते करधा ते धा गति करधा ते धा करधा ते धा गति धा गति कर दिन आगे धा करधा ते धा गति कर दिन आगे न ता करधा ते धा गति कर दिन आगे न ता आप विस्तार शुरू
ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ वेयर द क्लाइमैक्टिक पॉइंट ऑफ इट which might be thought of as a spire to a structure, to the top part of the structure, the colors, is actually thought of and conceived even before the foundation is built. So, in this case, a particular vistar, a particular expansion, which normally would not be a part of the kaida, is being brought in, conceived of, and then presented in such a way that it is totally integrated into the form of the kaida, so that the transitions are completely seamless. And that was the illustration.
Kaida aur rela, iska vistar karte time, main ye tino cheezon ko divide karna chahta hu, peshkar, kaida, rela. Short mein, maine last seminar mein bhi अरविंद जी कहा है कि पेशकार का अंतिम चरण जो है धिन्ना, कायदे का अंतिम चरण जो है काव्य धिना गिना और रेले का धिना कृतक धिंतर कृतक। ये शॉर्ट में अपवाद होते हैं लेकिन अपवाद नियम नहीं होते, अपवाद ही रहते हैं। लेकिन ये अगर तीनों को देखेंगे तो पेशकार लो फॉर्म में बचता है, कायदा मध्यलय में बचता है। कितना भी फास हो तो भी खंड स्वरूप रचना है कायदे की। धाती धागे न धात्र कितना भी तैयार बजाएंगे, ये खंड प्राय रचना है। इसके बोल जो है खंडित है। अखंडित रचना जिसको कहते हैं वो है रेला। ये रेला है, रव रेला। ये तो ये तीनों जो फॉर्म है इसमें से दो फॉर्म का विस्तार बुद्धि के बगैर ताकत से टेक्निक से हो सकता है। केवल याद करके अच्छी प्रस्तुति से भी इसकी रचना हो सकती है कायदे की और रेले की। रेले की हमेशा बढ़त ये दोहराने से होती है। दोहराना, शब्द को दोहराना। शब्द को दोहराना ये रैली के खास तरह के बलत है। इवन कॉम्प्लिकेटेड बल हो तो भी दोहराए जाते इसमें भी दोहराया गया है शब्द को। इवन कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद कायदे जैसे बल अगर रैली में भी करे यह तो होता है, लेकिन पेशकार क्या मानता है? पेशकार केवल रियाज नहीं मानता। पेशकार का स्वरूप यह अति विलंबित होने से कलाकार की वादन कौशल्यता के साथ उसकी विचार उसके बहुत जरूरी है किस तरह से। और क्योंकि पेशकार ये कंसेप्ट इस तरह है कि मुक्त बंदिश है, कायदे जैसी बंदिश नहीं है पेशकार। पेशकार में तरह तरह के कायदों के फ्रेज का, अनेक शब्दों का उपयोग आप पेशकार में कर सकते हैं और करना पड़ता है। धीक धिंधा तिद्धा घिन्ना धा कित तक धिंधा धा तिन्ना अब धा धा तिन्ना। ये जो एक्सप्रेशन है ये धा धा तिन्ना ऐसा नहीं है। आप अगर कहेंगे कि धीक धिंधा तिद्धा घिन्ना धा तिद्धा धा धा धिन्ना तो धा धा धिन्ना धा धा धिन्ना ये एक्सप्रेशन नहीं है। मगर धा धा धिन्ना शब्दों के साथ उसका दाब, घास के साथ उसका लय का बर्ताव, उसमें मैच्योरिटी, काव्य प्रधान का प्रेजेंटेशन, काव्य का आनंद, सुरों का नाद और उसका लय के साथ बर्ताव, ताल के साथ उसका फरशबंदी का स्वरूप, इस पेशकार से, पेशकार के पहले आवर्तन से कलाकार किस स्टैंडर्ड का है पता लगता है। क्योंकि पेशकार ये कंसेप्ट ऐसी है कि कलाकार किस दर्जा का कलाकार है ये बताने वाली चीज है पेशकार। तो कायदा रेला पेशकार के बारे में तो ये मैंने बताया।
To summarize, first of all, in the various forms of the tabla solo repertoire, the principal three that can be distinguished very early are peshkar, kaida and rela. When you just spoke about kaida and rela first, kaida is a somewhat more predetermined form than is the rela. The boundaries of the various divisions of the kaida can be easily heard and they are distinct. One cannot take liberties with them. On the other hand, on the rela, the divisions, although they exist in theory, the way it is actually played, the divisions are allowed to blur into one another. And one of the distinguished features of the rela is the fact that the syllables are accelerated. And even though sometimes they're repeated, the acceleration is a unique feature of the rela. On the other hand, the peshkar is innately much more soulful than lyric. The lyricism of the playing is allowed the full sway by the very nature of the way in which the artist tries to present. There are multiple sentiments being presented, and they are being presented by multiple devices. The actual phrasing of the beats, the pauses between the beats, the stressing and the de-stressing, and even the notation of the particular length of the silences form a very important component of the Peshka presentation. And the artist's ultimate artistry actually becomes very evident when the Peshka is presented.
मैं दीपचंदी में एक पेशकार प्रेजेंट कर रहा हूं from Ramnad Iswaranji. I am a disciple of Ramnad Iswaranji. So I thought Karnataka le iske division dekhi hai. Saadhe chaar, do, teen aur saadhe chaar. Hali bhari. क्षमता के लिए बंदिश ये प्रमाणभूत बन जाती है. एक बार बंदिश अगर पक्के बैठ गई, प्रमाणभूत बन गई, तो बंदिश ही विस्तार के कंसेप्ट बताती है कलाकार को. और इसलिए पुराने लोग कहते थे, उस रोज म्यूजिक फोरम ने हम लोगों ने वर्कशॉप किया था, मोगुबाई जी ने भी टेलीविजन पे बात ये कही है कि बराबर आने तक कितने बार अस्थाई अंतर कहने का ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन बराबर आने के बाद 108 बार कहने का अस्थाई. तो कहने का मतलब ये है कि अगर 108 बार बराबर आने के बाद अस्थाई अगर कह दी, तो अस्थाई कलाकार को सिखाने लगती है कि विस्तार कैसे करने का. तो वो रचना में ही सारे बीज होते हैं उसके. वो धीना को पहले कर दीजिए, धादीना को अलग कर दीजिए, ये तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन है होते हैं. लेकिन परमिटेशन कॉम्बिनेशन से पूरा विस्तार नहीं होता है, क्योंकि विस्तार में फील करना और वो फील ताल के साथ करना, ये बहुत जरूरी बन जाता है. नहीं तो कैलकुलेशन ये तो करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन गणित में वो बराबर आता है, लेकिन लय में आ रहा है या नहीं ये बताएंगे को. तो कैलकुलेशन तबले में तो होता ही है, लेकिन गणित में तो लय नहीं होती है. लय तो इसलिए लय एक लय का संतुलन रखना बहुत जरूरी है और लय में फ्री होने के लिए लय की एक साधना करनी पड़ती है। माफ करिए शिव जी, आपके बारे में मुझे बहुत लय के बारे में बहुत आदर है और आपके सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मुझे मालूम है, लेकिन ये सेमिनार का आधार लेकर ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका मेरे दिल में बहुत बड़ा स्थान है एज ए कलाकार और फिर खास करके लय के लिए तो मेरे दिल में बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन मुझे लगता है कि कलाकार पहले मैकेनिकल सोच लेता है, उसके बाद शारीरिक सोचने के बाद उसकी क्रिया बुद्धि में घूमने लगती है और बुद्धि में जैसे स्थिर हो जाती है लय, वैसे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करना शुरू करती है वो लय ताल का आवर्तन, और फिर जाके वो विस्तार के लिए फ्री हो जाता है और फिर विस्तार करना शुरू करता है और उसको डर नहीं लगता है कि अब स्वर पे कैसे आऊं, डर नहीं लगता है और शुरू होता है उसका आना। और इसी तरह ये पेस्टा अभी मुझे खुद को मालूम नहीं है कि क्या कैसा है, कहते हैं मुक्त बंदिश। इसमें जलद बोल भी बजा सकते हैं, विलंबित तो बजते हैं, लेकिन टोटली उसका असर विलंबित हो ये ध्यान देखना पड़ता है, उसी को पेशकार कहते हैं। अब मैं शॉर्ट में कह रहा हूं कि हम लोग ये कहते जरूर कि पेशकार कायदा रेला विस्तार क्षम रचना है और घट टुकड़े विस्तार क्षम नहीं है, कंप्लीट होते हैं। लेकिन इसका उदाहरण मैं पखावत से देना चाहता हूं कि आमद और टुकड़े जैसे रचना को प्रेजेंट करते हुए भी पखावत में, खास करके हमारे स्कूल में नाना साहेब पांसे जी के स्कूल में, मैं उनके स्कूल का समझता हूँ अपने आप को, हमारे स्कूल में प्रस्तार कहाँ है, प्रस्तार ये भी एक विस्तार का स्वरूप है इम्प्रोवाइजेशन का, और तालों के दशप्राण में प्रस्तार ये एक प्राण है। आप देखिए चौथा,
दिस इज अ what just went on is I think very central to the theme of the seminar, so I would like to take just a couple of minutes. And one of the things that was demonstrated, which is very effectively demonstrated, was the place of the disciplined composition as a basis for the improvisation. The point was made that a particular composition, in this case metrically, of a very complicated form, 4.5, 2, 3.5 and so on divisions, Panditji first played it as it was composed and said that once one has completely internalized this form, including the particular cadence and the metrical structure of that whole form, then that very mastery enables one to actually improvise within that form. And so the second time he played the same bandish in the Peshkar form, he introduced, as you heard, many subtle variations and ornamentations in such a way that they were intuitive, that is to say they were not calculated, and the form of the particular divisions was so completely internalized that the ornamentations and the improvisations simply flowed as a matter of course, intuitively.
जो हम लोग तबले में टुकड़ा या गद आमद इसको पूर्ण संकल्पित रचना जिसका विस्तार नहीं होता है कहते हैं, उसी फॉर्म को लेकर पखावज में विस्तार होता है। और ये संगीत मैंने जैसे कहा कि नियम बनाते हैं और नियम को खुला करने की भी संगीत ने अपनी एक ताकत रखी है, ये एक उसका स्वरूप है। जैसे कि पखावज में तभी विस्तार प्रकाश में होता है, मगर खाली भरी नहीं होती है। खाली भरी ये तो मृदंग गम और पखावज और तबला, ये तीनों ऑलमोस्ट स्याही के साज बहुत क्लोज साथ है, साज है, मगर खाली भरी होने वाला साज केवल तबला है। खाली भरी होती है तबले में, मृदंगम में भी खाली भरी नहीं होती है, तबले में भी नहीं होती है, पखाज में नहीं होती है। तो मां मुझे बहुत कुछ कहना है, विस्तार तो छंदों में भी होता है, कायदा शुरू में बचाकर कायदे का रेला करना ये भी एक विस्तार है। जैसे कि एक ही रचना देखिए कि कायदा और रेला, ऐसे समझ लीजिए कि कोई परकशन ईरान के साथ से बजा रहा है, कोई इंडिया से बजा रहा है, और दोनों का मिल गया है कहीं। ये वाली बात है कि कोई, हम लोग आज सारे पाश्चात्य लोग भी यहाँ आ गए, अलग अलग म्यूजिक के लोग बैठे यहाँ, कॉमन क्या हम लोग देख सकते हैं कि कायदा और रेला जैसे दोनों शुरू शुरू में अलग होने वाली रचना हम लोग उसमें क्या साधन में देखते हैं। ये भी एक विस्तार का रूप है कि जो हमने सोचा उसको अलग नजर से देखा, ये भी एक विस्तार की कंसेप्ट मुझे लगती है। और अभी हम लोग देखेंगे कि हाँ जी,
ब्यूटीफुल पॉइंट व्हिच इज जर्मेन टू द सेमिनार। Panditji makes the point that very often there is a way of, one might say, confounding two styles. Sometimes in music we call it avirbhav. But in this case, the boundaries between the two forms are allowed to merge in such a way that each form is reflected in the other. So the composition he played had ingredients which mixed both the characteristics of the kaida and the rela in such a way that they were fused into a very aesthetic whole. And he expressed the view that just as we have many musicians from many cultures today and melded into one particular whole in the seminar, this is an example of the same kind of thing happening in tabla, which is, I think, a very beautiful sentiment.
मैं श्रीधर पार्थी से विनती करूंगा कि मैं तो सीखा हूं, लेकिन उसका बारे में बात करने का मेरा अधिकार नहीं है। नहीं, मैं मंदिर से जानता हूं, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ बात करना नहीं होता है। आप ही एक्सप्लेन करिए। और
Before such learned people, I am a very small guy to be talking on this topic. It's my good fortune to have known Suresh Ji for so long, and he having considered me worthwhile to talk today. I have been more on the practical side of playing Mrangam rather than looking into books and reading up on the subject. But I guess this seminar has improved me to do that in that sense. Anyways, he has explained the role of tabla. There are certain constraints that the mridangam faces with respect to solo playing, because it is in the process of developing as a solo instrument. We have only two stalwarts as of now, alive, who are performing the instrument as a solo instrument, which goes on for an hour and a half. So we get to see their treatment. Unfortunately, it has not been codified like the tabla. Jitna apne terms bataya ki har ek ka naam jo hota hai, forms jo hota hai, ye hamare mein dikhta hai. When the tabla player plays, we are able to understand what is happening, but we are not able to name it that this is being played. As a concept, it is available with us. I think it's there with any of the percussion segments. Forget only mridangam tabla. It will be available with any percussion school. So I'll be talking about concepts. I don't have a name as of now, so I'll be saying concepts. And the idea is to build a core concept and build a good flowery garland around it to make it presentable. That is how the normal mridangam solo goes. It also has been seen that mridangam solos come after the main piece is rendered in a classical concert of 3.5 hours, whatever. So we are bound to execute a solo at a given speed. Mridangam doesn't, as of now, have the say in terms of the choice of speed that one will render the solo. Hence, the importance of the concept comes into play. That means, if I take, for example, Aditaal, which is 8-beat cycle, it is taka dimi, 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 ta. Assuming that this is the speed I was given the solo to perform at, one concept is splitting the taal as you did now for the peshkar. So let's say I am splitting it up as 3 and 5. So I'll have takatimi, 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 one part. Takatimi, 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 ta. That's the second part. Now the second part is a 5. So I can say 1, 2, 3, 4, 5. I can take this Aadhar now. So I can say This is how I will start looking at it when I perform. The immediate thing that comes to my mind is, if I play this cycle thrice, what happens is, I am playing ta first cycle, again second cycle twice, third cycle again twice, totally six times I am playing this dhati dagena or tadikinato. Immediately the mean, that means if I say 3 4 5, then 4 is the mean. If I say 5 6 7, then 6 becomes the mean. A mridangish will look at the mean, that means 2 is the mean. I shift out of the first 2, I take off 1 and put it in the third. So I get a pattern 1, 2 and 3. Still totaling to 6 dhati dageno. So now it will become takadimi, 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 tatikidnatum. Takadimi, 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 tatikidnatum. Tatikidnatum. Takadimi, 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 tatikidnatum. 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 So, given any taal, yeah. Basic concept. The idea I am trying to put in across is, once you know this, then if the taal is ideally at this pace, one can fill in roles, because it's the hand is more free at this speed rather than trying to execute at faster speed. So the concept itself won't get tied down to the fingering. Okay. So it is not necessary for me if I say takita, it is ideally. But if the speed is faster and I am not able to execute this, or a given hand, when I say there are tall, I mean big people, small people, they have each of them has a physical capability, incapability. However good your training might be, there are some things you will execute, there are some things you can't. In that case, what happens is, the concept is presented by everybody, but the execution part varies from person to person. So in that sense, I ideally 1 2 3 4 5 6 Okay, it'll be... Okay. If I'm given the speed... Think. Can be played, but if somebody is, I mean, you have done a solo, you are not able to execute it at this speed, then still it can be executed by that person. That is one aspect of live when playing. These things matter as to how you look at the subject and how you improvise your playing technique to suit the need of the hour. Okay. Taking one step further, if I'm the moment I say three executable thrice, then it's divisible by three without any remainders. So that means it can be played in Tishra Jati. Okay, Tishra Jati is a triplet, as in it's a parallel lay. It is not in relation to two or four. Takka Timmi is a different lay, and Takkita is a different lay. Because although we find a relation when we say Takkita, four Takkitas, four times three, you are playing 12. You could say Takka Timmi. That is a relation that you define in three, not in four. So they are different layers by themselves. The same concept if I need to execute in triplet will be This can be a lower speed. I'll just demonstrate this, huh? Way of going ahead with improvisation on Madanga. There's a new concept that is also coming up. We get inspired a lot from the tawil players also, the way they handle the tals. I'll give a short example of that. Now, takka timmi, ta. 8 and 4 times you play that, that's 32. But if I split the first half, first 4, to be a khanda jati, that means instead of 4, I'll run a 5 in those 4 beats. So I'm playing 20 there in the first half. The second half, I'll play triplets. That becomes 12, 4 into 3, 12. 20 and 12 is still 32. But you have ended up playing two jatis. A simple example will be dhati dhaga dhina ghena dha, dhati dhaga dhina ghena dha, dhati dhaga dhina ghena, dhati dhaga dhina ghena dha, dhati dhaga dhina ghena dha, dhati dhaga dhina ghena dha. This, if you apply to compositions themselves, will be seen in a different light. Like tati takatina tang, tatikinda tung, takatina tang, tatikinda tung, takatina tang, tatikinda tung, takatikinda tung, takatika, tatikinda tung, takatina tung, tatikinda tung, takatina tung, tatikinda tung, takatina tung, tatikita tung, takatikita tung, takatika, tatikinda tung. All your tihais, all the things that you learn can be presented through these concepts as new compositions, if you want. I mean, you can sound it different because I think you will help me. Okay. Take care. Okay. Take care. I'll do the theka side of it. Also, the melodic side that normally is done with the singer or the instrument player. Later we have a defined term as in Korepu, which is the sawal jawab that normally happens. Yeah. That can also be treated in different layers in a given taal. That widens the scope of playing the Korepu itself. Then there is a mohra, and then the final korve that will lead into the song. So that is the format that is available with us now, as of now. Of course, the technical terms can be got from a number of sources apart from me. So, I think I've said what I want to. Thanks so much. Thank you.
विस्तार के बारे में बहुत कुछ कह भी सकते हैं और ये हम लोगों ने तबले के वर्कशॉप में इन चीज़ों को बहुत कुछ कहा है और दो दो वर्कशॉप तबले के सेमिनार यहाँ हो चुके हैं तीन तीन दिन के और उसमें विस्तारक्षम के ऊपर काफ़ी बात हो गई है। शॉर्ट में मुझे ये लगता है कि विस्तार के रूप में कलाकार के सामने एक चुनौती तो होती है मगर इस विस्तार को तंत्र के परे होकर कला का रूप देना खुद का व्यक्तित्व प्रदान करना ही सच्चे कलाकार की पहचान है। अगर एक ही रचना अलग अलग कलाकारों से सुनो तो अलग अलग लगती है। ऐसे लगता है कि हर एक कलाकार उसी एक रचना को ही अपने अपने ढांचे में डालने की कोशिश कर रहा हो। उसके आघात बदलते हैं, घेरा और बलस्थान भी बदलते हैं। हर एक कलाकार की अनुभूति क्षमता और प्रेरणा पर यह निर्भर होता है। तो एक ही रचना के ऐसे विभिन्न रूपों को भी क्यों न विस्तार कहा जाए, क्योंकि रचना नाम की एक चीज अस्तित्व में है। सब लोग उसी को कह रहे फिर को काम को अलग अलग लग रहा है, सबका आनंद मिल रहा है, तो उसी रचना का ये सारा विस्तार क्यों नहीं समझते, ये मुझे कहना है। भारतीय संगीत में स्वर लय की सूक्ष्मता का बड़ा गहन स्थान है, मगर सूक्ष्म रूप से बड़े अर्थ प्रतीत होते, हमेशा यह रहा है कि जिस तरह की कोई ऑडियंस में समझदार लोग होते हैं तो कहते कि यार दरबारी के गंधर्व का मजा नहीं आ रहा है, तो इस तरह अगर पहले मात्रे का धा धीन और चौथे मात्रे का धा, इसमें अगर फर्क खुद बजाने कलाकार को अगर महसूस नहीं हुआ, तो जैसे हम कुछ दूसरा काम करते हैं और दूसरा काम करते हुए रिकॉर्ड लगाते हैं और एक ही सुर बताता है हमें कि ये राग गा रहा है, वैसे मुझे लगता है कि विलंबित ठेका शुरू होने के बाद मैंने धीन पहले जो लगाया है, दूसरा मात्रे का धीन से पता लगना चाहिए कि मैं एक ताल बजा रहा हूँ, झुमरे का धीन लगाया है, दीपचंदी का धीन लगाया है या कौन सा ढा लगा है, वो सबकॉन्शियस माइंड को प्रेरित हो जाना चाहिए, खास ध्यान देकर तो होता ही है, फिर जिनको नहीं होता है वो बेचारे तो मात्रा गिन कर सिद्ध कर लेते हैं, तो बात अलग है, लेकिन शब्दों का अगर सहारा ले तो बात ये होती है कि उसी नाद से पहले वो अक्षर से मालूम पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है, तो इसलिए ये मुझे ये कहना है कि भारतीय संगीत में स्वर लय की सूक्ष्मता का बड़ा सूक्ष्मता का बड़ा स्थान भारतीय संगीत में है, मगर सूक्ष्म रूप से बड़े अर्थ प्रतीत होते, उनका बोध होना, उसे वादन में परावर्तित करना, सजाना, अपने व्यक्तित्व की मुहर उस पर लगाना, ये प्रत्येक कलाकार की व्यक्तिगत धारणा होती है, मगर निश्चित रूप से भारतीय संगीत की विस्तार कल्पना सिर्फ परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, तो एक विचार है, अनुशासन है, सौंदर्य कल्पना है, स्ट्रक्चरल है, बुद्धिमत्ता है, कौशल्य है और कला का अपूर्व संगम है।
It's a summary of, I think, Suresh Ji's general attitude towards performance, and it's a position that he's expressing, which is based on tremendous experience in performance and a lot of thinking about what the aesthetic of the performance means. So, in particular, he says the concept of vistara or improvisation, in one way of looking at it, he says that each artist brings his own individual stamp to the performance based on his experience, his knowledge, and his inspiration of the moment. And this gives a particular personality or individuality to each performance, which itself can be considered as an improvisation. Now, those of you who attended the seminar earlier will certainly resonate this with Professor Rocha's remarks about how each performance of a particular composition can be regarded itself as an improvisation. You see how independently people think about similar things. Finally, he says that in the music of India, subtlety plays a very central role. It's very small in its manifestations, but very big in its effects. What is subtle is expressed in such a way as to have a profound effect on the audience. So the actual projection of the personality of the performer, which is a complete amalgam of many, many different components, his aesthetic sense, his contextual sense, the sense of the moment, the particular inspiration of the mood of the time, his knowledge of the composition, the technique, And finally, his entire aesthetic approach, which enables him to fuse all these different components into a unique whole of the performance. And that is his final comment on this seminar. I have one question which I may be permitted to ask the Panditji. You have मैं अंग्रेजी में पूछूं क्योंकि सबको मालूम हो जाए तो I'll phrase the question in English. Most of his talk today has been concentrated on improvisation in the context of solo tabla performance. However, I think that for many people, sometimes the idea is that when the tabla is used as an accompanying instrument, there may not be very much scope for improvisation. But most of us who have listened to it know that this is not the case. There is scope for that kind of improvisation. So what I would like you to do is comment on this aspect and perhaps illustrate how in accompaniment there can be improvisation.
एक ही बंदिश कहता हूं और उसमें देखिए कि संगत के टाइम पे क्या होता है मालूम नहीं होता है. संगत करते टाइम बंधन होते हैं, हम लोगों को बहुत कुछ सुझाई देता है मगर इतना बजाना नहीं होता है. एक तो मुख्य कलाकार का मूड, उसकी रिक्वायरमेंट ध्यान में देखना पड़ता है, साउंड भी देखना पड़ता है कि कितना ध्वनि हमारे तबले से आवश्यक है उस वाद्य को और कलाकार को. सारी चीजों का बंधन होता है लेकिन उसी चीज को मैं अपने सोलो द्वारा मैं प्रेजेंट करता हूँ हमेशा. और उसका एक एग्जांपल है काना कर ये कोई फिक्स बात नहीं. तो ये उपज होती है, स्पॉन्टेनियस बात होती है. का ना अब फिक्स बात भी देखिए प्री कंपोज